بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کے سبھی شروتاؤں کو زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 207 سے 209 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پایا ہے شری سبز علی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو ایشور کی مرضی کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتینت کرونا میں ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب پورن روپ سے اسلام میں پرویشت ہو جاؤ، اور شیطان کے پچنوں کا انسرن نہ کرو، کہ نسندے وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ फिर यदि तुम स्पष्ट निशानियों के आ जाने के बाद भी लड़खड़ा गए तो जान लो कि निसंदेह ईश्वर अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज बुधवार है, बहमन की 20, रजब की 7 और फरवरी की 9 तारीख। श्रोतो, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएगा। तो पत्र व्यवहार के लिए हमसे हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.iribi.ir, जबकि वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। और व्हाट्सएप पर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा पता है 00989035065492। श्रोता, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप सदा की भांति देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप स्वतंत्रता प्रभात के संबंध में सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। श्रोताओं, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पश्चिमी देशों ने यथार्थवादी रुख नहीं अपनाया तो वार्ता में प्रगति नहीं होगी। सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा कि ईरान आज क्षेत्र की बड़ी ताकत है। जॉन बोल्टन ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैनिक धमकी गिदड़ भभकी है। राष्ट्रसंघ ने कहा है कि अवैध अधिकृत फिलिस्तीन पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए चुनौती है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
पश्चिमी देशों की ओर से वियना में जारी वार्ता में तेजी लाने पर बार बार किए जा रहे आग्रह के जवाब में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाया ने कहा है कि अगर पाबंदियां हटाए जाने के मामले में पश्चिमी देशों ने यथार्थवादी रुख नहीं अपनाया तो वार्ता प्रक्रिया में तेजी नहीं आ सकती। अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से टेलीफोनी वार्ता में हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने बात कही। उन्होंने वियना वार्ता में रूस के दृष्टिकोण को सार्थक बताते हुए कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान एक अच्छे समझौते के लिए गंभीर है, जिससे ईरान के हित पूरे होते हों। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने इसके साथ ही ईरान और रूस के बीच ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की मॉस्को यात्रा में हुए समझौते को अमली जमा पहनाए जाने के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान भी यही चाहता है कि वियना वार्ता के नतीजे में जल्द से जल्द अच्छा समझौता हो जाए, लेकिन अगर पश्चिमी देश यथार्थवादी रुख नहीं अपनाते और व्यवहारिक कदम नहीं उठाते तो वार्ता में रफ्तार नहीं आएगी। अमीर अब्दुल्लाहिया ने कहा कि पाबंदियों का प्रभावी रूप से हटना बहुत महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ में मॉस्को तथा अन्य पक्षों से ईरान का संपर्क और विमर्श जारी रहेगा। रूसी विदेश मंत्री ने भी इस टेलीफोनी वार्ता में इस्लामी गणतंत्र ईरान की क्षमा कीजिएगा रूसी विदेश मंत्री ने भी इस टेलीफोनी वार्ता में इस्लामी क्रांति की सफलता की सालगिरह की बधाई दी और ईरान पर लगी गैर कानूनी पाबंदियां हटाए जाने और परमाणु डील की बहाली पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को अपनी प्रतिबद्धताओं की ओर लौटना होगा।
हिजबुल्ला लिबनान के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्ला ने ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता की सालगिरह के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि जब इमाम खोमेनी निर्वासन के बाद फ्रांस से स्वदेश लौटे थे तो जनता के चेहरे पर हर्ष की जो लाली थी वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र की बड़ी ताकत और विश्व परिवर्तनों में असरदार है। 1 फरवरी 1979 को इमाम खोमेनी 15 साल का निर्वासन गुजारने के बाद स्वदेश लौटे थे। इसके 10 दिन बाद 11 फरवरी 1979 को ईरान का इस्लामी इनकलाब कामयाब हो गया। ईरान में ये 10 दिन आज़ादी की सुबह के नाम से याद किए जाते हैं और इनकलाब की सालगिरह मनाई जाती है। सैयद हसन नसरुल्ला ने मंगलवार की शाम अल आलम टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान आज इस पहलू से सारी दुनिया में आदर्श है कि वास्तविक स्वाधीनता और संप्रभुता का मालिक देश है। इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह खामनेई की सराहना करते हुए सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा कि ईरान के विवेकपूर्ण नेतृत्व ने इस देश को हर क्षेत्र में विकास का सफर तय कराया। ईरान पहले भी तानाशाही दौरे में अमरीकियों के हाथों संचालित होता था, मगर इस्लामी इंकलाब ने शाही सरकार का तख्ता उल्टा और अमरीकियों को पूरी तरह बेदखल कर दिया। इसी तरह इसराइल को भी ईरान से बाहर खदेड़ दिया गया। सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा कि ईरान इलाके का ताकतवर देश है, उसके खिलाफ कोई भी जंग छेड़ी गई तो पूरा क्षेत्र विस्फोटित हो जाएगा।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ईरान के खिलाफ बाइडेन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि तेहरान के खिलाफ अमेरिका की सैनिक धमकी खोखली व गीदड़ भभकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ताकाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने न्यूज वीक पत्रिका के साथ साक्षात्कार में कहा कि बाइडेन सरकार परमाणु समझौता चाहती है और अंत में वो इस पर सहमति कर लेगी। उन्होंने कहा कि बाइडेन सरकार पिछले 1 साल से परमाणु समझौते को जीवित करने की कोशिश कर रही है और इस दौरान उसने स्वयं को जलील कर लिया है और एक के बाद दूसरी विशेषता उसने दी है। ज्ञात रहे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ईरान के विरुद्ध अधिकतम दबाव की नीति के प्रबल समर्थक व पक्षधर थे और अब बहुत से विशेषज्ञों, जानकारों, यहां तक कि स्वयं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि सैनिक विकल्प मेज पर है, मेरे विचार में ये एक खोखली धमकी है और मैं नहीं समझता कि ईरानी अमेरिका की इस धमकी से डरते होंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मई 2018 में एक पक्षीय रूप से ईरान के साथ होने वाले परमाणु समझौते से निकल गए थे, जिसकी देश के भीतर और बाहर उनकी काफी आलोचना हुई थी। ईरान के मामलों में अमेरिका के विशेष दूत रॉबर्ट मेली ने अभी हाल ही में एक साक्षात्कार में बल देकर कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने हेतु ट्रंप सरकार के अधिकतम दबाव की नीति का उल्टा नतीजा निकला है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि कुछ सहित अवैध अधिकृत फिलिस्तीन विश्व की शांति व सुरक्षा के लिए चुनौती है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि फिलिस्तीन सरकार की स्वतंत्रता व स्वाधीनता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वादा पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रसंघ के महासचिव ने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा स्थिति की ओर संकेत किया और कहा कि फिलिस्तीनी अतिग्रहणकारियों की ओर से की जाने वाली अधिक हिंसा, सुरक्षा न होने, अपने घरों और संपत्तियों से हाथ धोने के कारण दुखी हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थिति की समीक्षा के लिए होने वाली बैठक में राष्ट्रसंघ के महासचिव ने ये बातें कहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अभी एक रिपोर्ट में कहा था कि इसराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ नस्लभेदी नीति अपनाए हुए है। इसी प्रकार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसराइल खुल्लम खुल्ला मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में जातिवाद और नस्ली भेदभाव के संबंध में पिछले सप्ताह एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ज़ायोनी शासन ने संस्था के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने अफगानिस्तान के चिंताजनक हालात बयान करते हुए कहा है कि हाल ही में सत्ता में आने वाले तालिबान के साथ अलकायदा के अतीत के संबंध अफगानिस्तान को चरमपंथियों का सुरक्षित ठिकाना बना सकते हैं और आतंकी संगठन को वहां इस समय अतीत के किसी भी दौर से अधिक आजादी हासिल है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार कई विषयों की तस्वीर पेश करने वाली इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अलकायदा और दाइश दोनों से जुड़े हुए चरमपंथी अफ्रीका में विशेष रूप से तटीय इलाकों में सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इराक और सीरिया में ग्रामीण इलाकों में दाइश ने अपनी गतिविधियां जारी रखी है।
संयुक्त अरब इमारात की राजधानी अबूधाबी में भीषण धमाका हुआ जिसके बाद आग लग गई। नगरीय सुरक्षा विभाग ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। ये घटना अबूधाबी के हमदान रोड पर हुई। इस बीच अमरीकी दूतावास ने चेतावनी जारी की है कि अबूधाबी पर मिजाइल या ड्रोन अटैक हो सकता है। दमकल विभाग का कहना है कि जिस इमारत में आग लगी उसे खाली करा लिया गया और आग को फैलने से रोक दिया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो केवल औपचारिक स्रोतों से सही जानकारियां हासिल करें, किसी तरह की अफवाह न फैलाएं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल्ला महासचिव द्वारा अल आलम टीवी चैनल को दिए गए ताज़ा इंटरव्यू के बारे में। और फिर बात करेंगे ईरान की सैनिक ताकत का लोहा मानने के लिए मजबूर हुए अमरीका के बारे में,
अमरीका की सेंट्रल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ पद के उम्मीदवार।
और अंत में चलेंगे भारत, जहां कर्नाटक राज्य में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में मुसलमान महिलाओं के हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश को लेकर।
तो सबसे पहले हिजबुल्लाह महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा दिए गए ताज़ा इंटरव्यू के जरिए दुश्मनों की साजिशों से उठाए गए पर्दे के बारे में बात करते हैं। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास।
कमन व नवहन والقدره البشويه المتوفره ايضا وهي لا سابقه لها في تاريخ لبنان بل في تاريخ حركات المقاومه في مواجهه العدو الصهيوني।
हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने मंगलवार की शाम को अल आलम टीवी चैनल के साथ एक विशेष साक्षात्कार में लिबनान और विश्व के हालिया घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से बात की। सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से एक बार फिर से दुश्मनों द्वारा की जा रही ऐसी साजिशों पर से पर्दा हटाया कि जो न केवल अधिकारियों, राजनेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के जन संचार माध्यमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि स्थानीय और क्षेत्रीय जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा की गई बातें एक बार फिर लेबनान के खिलाफ ज़ायनी शासन की हालिया धमकियों, गलतियों और प्रतिरोध की धुरी के विरुद्ध उसकी और उनके सभी घटकों के षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब थी। सैयद हसन नसरुल्लाह से जब ये पूछा गया कि क्या इसराइल को हिजबुल्ला की मिजाइलों की संख्या और उनके भंडार के स्थानों के बारे में जानकारी है, تو حزب اللہ کے مہاسچیو نے کہا کہ ہم پہلے بھی اسرائیل دوارا آواسیہ علاقوں پر کیے جانے والے حملوں پر خاموش نہیں بیٹھے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک استھانوں پر حملہ کرنے کا ساہس کرے۔ حزب اللہ کبھی بھی یدھ کا سمرتھن نہیں کرتا لیکن اس سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرا بندو کی جس پر سے پہلی بار سید حسن نصر اللہ نے پردہ اٹھایا ہے وہ ہے حزب اللہ کی ہوائی شکتی جو دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے۔
المسیرات تأتي الى منطقة البقاع وضمن مدايات متفاوتة، احيانا يوم او شهر شهران ثلاثة اشهر لا تأتي حتى مسیرة واحدة۔
دکشن میں بھی ان کی اڑانیں کم ہو گئی ہیں۔ لبنان کے اتہاس میں پرتیرود کی بڑھتی شکتی ابھوتپورو ہے، یہاں تک کہ دشمن کے مقابلے میں پرتیرودھک دلوں کی بڑھتی طاقت نے آج ہر یدھ میں پرتیرود کو اجے بنا دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے پرمکھ سید حسن نصراللہ نے ایران کی اسلامی کرانتی کی سفلتا کی سالگرہ کے سندرب میں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ جب امام خمینی نرواسن کے بعد فرانس سے سودیش لوٹے تھے تو جنتا کے چہرے پر ہرش کی جو لالی تھی وہ کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔
كانت محكومه من قبل الولايات المتحده الامريكيه، صح في شاه وفي حكومه شاه، ولكن ايران في ذلك الوقت اللي كان عدد سكانها 35 مليون كان فيها 60,000 مستشار امريكي۔
انہوں نے کہا کہ آج ایران شیتر کی بڑی طاقت اور وشو پریورتنوں میں اثردار ہے۔ اسلامی کرانتی کے نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی سراہنا کرتے ہوئے سید حسن نصراللہ نے کہا کہ ایران کے وویک پورن نیتروتو نے اس دیش کو ہر شیتر میں وکاس کا سفر طے کرایا ہے۔ ایران پہلوی تاناشاہی دور میں امریکیوں کے ہاتھوں سنچالت ہوتا تھا، مگر اسلامی کرانتی نے شاہی سرکار کا تختہ الٹا اور امریکیوں کو پوری طرح سے بے دخل کر دیا۔ اسی طرح اسرائیل کو بھی ایران سے باہر کھدیڑ دیا گیا۔ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ ایران علاقے کا طاقتور دیش ہے، اس کے خلاف کوئی بھی جنگ چھڑی گئی تو پورا شیتر وسفوٹت ہو جائے گا۔ حزب اللہ کے پرمکھ نے کہا کہ ویسے اس سمے امریکہ کی پراتھمکتا ایران سے جنگ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی پراتھمکتا چین اور روس کا مقابلہ کرنا ہے۔
اور اب بات کرتے ہیں امریکی جنرل دوارا ایران کی بڑھتی طاقت کے قبول نامے کے ساتھ ہی مائیکل کوریلا نے ایران کو سینٹرل کمانڈ کی گتیویدیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا ہے۔ اس بارے میں وستار سے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی احمد عباس۔
امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے چیف آف اسٹاف پد کے امیدوار مائیکل کوریلا نے منگلوار کو سینیٹ کی بیٹھک میں کہا کہ ایران کے پاس آدھونک سینک کمتا ہے، پراکسی سنگٹنوں کا ایک نیٹورک ہے، وہ امریکہ اور اس کے گھٹکوں کے خلاف طاقت کے استعمال کا رجحان رکھتا ہے، اس لیے سینٹرل کمانڈ کی گتیویدھیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران ہے۔ امریکہ کے جنرل نے کہا کہ بیلسٹک میسائل، ڈرون اور نوسینا کی طاقت ایران کی لگاتار بڑھتی شکتی کے مکھیہ استمبھ ہیں، اور ایران کے پاس کم اور مدھم دوری کی مار کرنے والے میسائل علاقے میں انیک لکشیوں کے لیے خطرہ اتپن کرنے کی کھمتا رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ زمین سے ہوا میں مار کرنے والے ایرانی میسائل انتراشٹریہ وایو سیما میں امریکہ کے جاسوسی اپکرنوں کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ جنرل مائیکل کوریلا کی اور سے ایران کی سینک شکتی کے بارے میں یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ پشمی دیشوں کی اور سے ایران پر کئی دشکوں سے جاری پابندیاں ایران کی رکشا پرگتی کو روک نہیں سکیں، اور آج امریکہ کو اس علاقے میں اپنی وستاروادی یوجنائیں اور سینک گتیویدھیاں خطرے میں نظر آنے لگی ہیں۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی رکشا رڑنیتی پرتیرودھک آیام پر آدھارت ہے۔ خطروں سے خود کو سرکشت رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ایران رکشا ادیوگ میں پرگتی کرتا اور ضرورت کے رکشا اپکرن تیار کرتا۔ ایران نے رکشا کھیتر میں اپنی مضبوطی کے لیے بیلسٹک میسائلوں پر بہت کام کیا اور الگ الگ رینج کے میسائل بنائے۔ ان میسائلوں سے اسرائیل اور امریکہ کو گہری چنتا ہے۔ امریکی ٹیکہ کار رابن رائٹ کا کہنا ہے کہ ایران لمبی رینج، سٹیک نشانے اور ادھک ودھونسک شکتی والے میسائلوں پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ کی رکشا انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا کہ ایران کے پاس پشمی ایشیا میں سب سے بڑا میسائل بھنڈار ہے۔ ایران کی دوسری بڑی طاقت اسمان جنگ کی مہارت ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کی نوسینا نے انیک پرکار کی جنگی نوکائیں بنا کر فارس کھاڑی میں امریکہ کے مقابلے میں خود کو کافی مضبوط کر لیا ہے۔ ایران نے اس کے ساتھ ہی الگ الگ پرکار کے ڈرون، ایئر ڈیفینس سسٹم، کئی پرکار کے کروز میسائل بنا لیے ہیں۔ ایران کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے امریکہ کا اتیادھنک گلوبل ہاک ڈرون مار گرایا اور اپنی طاقت اس طرح دکھائی۔ ایران کی رکشا شکتی میں ہونے والی اس وستار سے امریکی سینک کمان کی چنتائیں بڑھ گئی ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے امیدوار کے بیان سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
اور اب رک کرتے ہیں بھارت کا اور بات کرتے ہیں بھارت کے راجیہ کرناٹک میں حجاب کو لے کر شروع ہوئے وواد کی آنچ اب اس دیش کے کئی راجیوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں دلی سے ہمارے سنواددتا شمشاد کاظمی۔
کرناٹک کے اسکول کالجوں میں مسلمان مہیلاؤں کے حجاب پر پرتیبند کے آدیش کو لے کر شروع ہوا وواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کرناٹک کے کئی ضلعوں کے اسکول اور کالجوں کے چھاتروں کے گٹ آمنے سامنے آ گئے تھے۔ مسلمان چھاترائیں جہاں حجاب پر پرتیبند کا ویروھ کر رہی تھیں، وہیں دکشن پنتھی گٹوں سے سمبندھت چھاتروں اور چھاتراؤں نے حجاب کا ویروھ کیا اور کیسری دوپٹے گلے میں ڈال کر نعرے لگائے۔ بتایا جاتا ہے کہ چھاتروں کے گٹوں کے بیچ پتھراؤ کی واردات بھی ہوئی تھی۔ استھتی کو دیکھتے ہوئے کرناٹک کی بھاجپا سرکار نے 3 دنوں کے لیے اسکول کالج بند کر دیے ہیں اور سنویدنشیل کھیتروں میں دھارا 144 لاگو کر دی گئی ہے اور شیواموگا میں پولیس نے فلیگ مارچ کیا۔ حجاب کو لے کر کرناٹک کے اڈوپی کالج سے شروع ہوا وواد اب پھیل گیا ہے اور کئی کھیتروں کے شیکشنک سنستھانوں میں حجاب کے سمرتھن اور ویرودھ میں ہوئے پردرشنوں کے بعد تناؤ بڑھ گیا ہے، جس کے بعد پولیس اور پرشاسن کو ہستکشیپ کرنا پڑا۔ کچھ مسلم چھاتراؤں نے حجاب پہننے کے ادھیکار کو بحال کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ یہ معاملہ اس سمے کرناٹک اچ نیالیہ میں وچارادھین ہے۔ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ پردہ کرنا کوئی نئی پرتھا نہیں ہے، بلکہ لمبی اودھی سے نہ کیول مسلمان بلکہ دوسرے دھرموں کی مہیلائیں بھی پردہ کرتی رہی ہیں۔ کرناٹک میں حجاب پر اٹھنے والا وواد اتر پردیش کے راجنیتک منچوں تک پہنچ گیا ہے، جہاں ودھان سبھا کے چناؤں کے لیے کل پہلے چرن کا متدان ہونے والا ہے۔ اکھل بھارتیہ مجلس اتحاد المسلمین کے ادھیکش اسد الدین اویسی نے سنبھل کی ایک چناوی سبھا میں حجاب پر پرتیبند کا ویروھ کرتے ہوئے کہا،
بی جے پی کی سرکار کرناٹک میں غیر ضروری کے ظلم کر رہی ہے، سمویدھان کے خلاف کام کر رہی ہے، بلکہ سمویدھان کی آرٹیکل 15, 19 اور 21 کا گریو وائلیشن ہو رہا ہے کہ وہاں کے مہیلا بچیوں کو اسکول میں اور کالج میں حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے۔ میں بی جے پی کے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہوں۔
کانگریس کی مہا سچیو پریانکا گاندھی نے اپنے ٹویٹ سندیش میں کہا کہ مہیلاؤں کو اپنے وستر کے چین کا ادھیکار ہے اور یہ ادھیکار انہیں بھارت کے سمویدھان نے دیا ہے، اتہ وستر کے آدھار پر مہیلاؤں کو پرتاڑت نہیں کیا جانا چاہیے۔ الپ سنکھیک معاملوں کے کیندری منتری مختار عباس نقوی نے کہا کہ ہمارے دیش میں الپ سنکھیکوں سہیت سماج کے سبھی ورگوں کو سمان آرتھک ساماجک ایوم شیکشنک ادھیکار پراپت ہیں۔
ہمارے دیش میں سماج کے سبھی ورگوں کے ساتھ الپ سنکھیک سماج کے آرتھک ساماجک شیکشنک ادھیکار برابر سے ہیں اور دھارمک سوتنترتا سرکشت ہے۔ یہ سمویدھانک سرکشا بھی ہے اور ساماجک سرکشا بھی ہے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ دیش کا ہت نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں دیش کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اسی بیچ اکھل بھارتیہ شیعہ کونسل نے بھی کرناٹک میں چھاتراؤں کے حجاب پر پرشاسن کی اور سے لگائے گئے پرتیبند کی نندا کی اور اسے دھرم نرپیکش مولیوں کے ویرودھ بتایا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
دوستوں، اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم یہیں سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستو، ہماری آج کی سبھا کا انتم کارکرم ہوگا آج کل، لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے اسلامی کرانتی کی سفلتا کی 43ویں ورش گارڈ کے اوسر پر ریڈیو ہندی تہران کی اور سے پیش کیے جانے والے وشیش کارکرم کی ایک انکڑی۔
स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, कार्यक्रम स्वतंत्रता प्रभात की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है कायम रिजवी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद से अब तक तीन नस्लें बड़ी हो चुकी हैं। पहली नस्ल वह है जो 1963 में जवान थी और उसने अपनी उम्र का एक भाग शाही शासन के खिलाफ आंदोलन में बिता दिया। इस नस्ल ने इमाम खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति को सफल बनाया और देश में इस्लामी शासन की स्थापना की। इस नस्ल को हम इस्लामिक क्रांति की सबसे ज्यादा वफादार नस्ल कहते हैं, जिसने क्रांति के सबसे कठिन दिनों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया और तरह तरह की चुनौतियों के बावजूद क्रांति को उसके रास्ते से भटकने नहीं दिया।
दूसरी नस्ल उन जवानों की है जिन्होंने अपने ईमान के प्रकाश से इस्लामी क्रांति को ऊर्जा प्रदान की। इस नस्ल ने बहुत ही कम सुविधाओं में सद्दाम के हमलों का मुकाबला किया और युद्ध में उसके खिलाफ सफलता अर्जित की। इस नस्ल को क्रांति और जंग की नस्ल कहा जाता है। उसे सन 1979 में क्रांति की सफलता का अनुभव था और उसने युद्ध के बाद देश के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। आज अधिकांश अधिकारी और प्रबंधक इसी नस्ल से संबंध रखते हैं।
तीसरी नस्ल दूसरी नस्ल के बच्चों पर आधारित है। इस नस्ल को क्रांति और युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। हालांकि ये नस्ल क्रांति की सफलता के बाद के जोश भरे माहौल में बड़ी हुई है। इस नस्ल का मानना है कि अपने राष्ट्र के भविष्य निर्धारण में उसका पूरा अधिकार है। क्रांति द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार के आधार पर यह नस्ल देश के भविष्य निर्धारण में अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि आबादी में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। प्रगति, परिवर्तन, आधुनिकता और भरपूर जीवन जीना इस युवा पीढ़ी की विशेषता है। इसीलिए नई नस्ल इस्लामी व्यवस्था की प्रगति और संप्रभुता के मार्ग में एक मील का पत्थर है।
आत्मविश्वास और आत्मसम्मान किसी के भी व्यक्तित्व और सफलता की नींव है। अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में युवा इस महत्वपूर्ण विशेषता के कारण महान कार्य अंजाम देते हैं। वे उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और अपनी योग्यता पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास युवा नस्ल के लिए सबसे बड़े मानवीय गुणों में से एक है। ये गुण किसी भी व्यक्ति को दूसरों के प्रति नैतिक कार्य और कर्तव्यनिष्ठता से प्रेरित करता है। इसके अलावा ये नस्ल अपनी स्वतंत्रता और साहस के कारण किसी के सामने झुकती नहीं है और अपमान सहन नहीं करती। ये किसी भी कीमत पर अपने सम्मान और स्वतंत्रता का सौदा नहीं करती।
जिन विशेषज्ञों ने ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के कारणों का विश्लेषण किया, उन्होंने पहलवी शासन द्वारा जनता के अपमान और उसके विदेशी समर्थकों द्वारा हद से ज्यादा हस्तक्षेप का उल्लेख जरूर किया है। शाही शासन के दौरान ईरानी जनता का बेहद अपमान किया गया था। यही वजह है कि इमाम खुमैनी की आवाज पर जनता ने तुरंत लब्बैक कहा और एक नए आंदोलन को सफलता तक पहुंचाया। क्रांति के बुद्धिमान नेता ने एक कुशल मनोवैज्ञानिक की तरह युवाओं को पहचान दी और उनकी क्षमताओं पर भरोसा किया। अगर हम इमाम खुमैनी के बयानों पर नजर डालेंगे तो हम देखेंगे कि वे बार बार युवाओं में आत्मविश्वास जगाने और उसे मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इमाम खुमैनी बल देकर कहते थे, सबसे अहम बात यह है कि आप दो दिशाओं पर ध्यान दें। जैसा कि मैंने कई बार उल्लेख किया है, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा करना जो आपकी मदद करता है जब आप उसके लिए काम करते हैं, और दूसरे आत्मविश्वास। आप युवा लोग स्वयं हर काम कर सकते हैं।
आत्मविश्वास की ज्योति जगाने की यह शैली इमाम खुमैनी के बाद उनके उत्तराधिकारी इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने भी जारी रखी। उनका मानना है कि इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह भी है कि इसने युवाओं में आत्मविश्वास जगाया और उनकी प्रतिभाओं को नई धार प्रदान की। इस्लामी क्रांति ने निर्भरता की जंजीरों को तोड़ दिया और युवाओं में आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास को मजबूत कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप ईरान में शिक्षा और विज्ञान का विस्तार हुआ। इस संदर्भ में वरिष्ठ नेता कहते हैं कि क्रांति से पहले विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं और दूसरे लोगों के लिए रचनात्मक कार्यों तथा आविष्कारों के लिए भूमि प्रशस्त नहीं थी, लेकिन क्रांति ने समाज में आत्मविश्वास को जगाया और प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। इस्लामी क्रांति की बरकत से हमने इस बहुत ही कठिन दौर में तेजी से प्रगति की है जो बाकी दुनिया की प्रगति की गति से कहीं तेज है।
इस्लामी क्रांति की सफलता को आज 4 दशक बीत चुके हैं। इस दौरान आत्मविश्वास और खुद को पाने की अवधारणा ईरानी युवाओं की एक विशेषता बन गई है। आज ईरानी जनता और युवाओं की नजर में आजादी सिर्फ एक आदर्श और अप्राप्य आदर्श या लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसके मधुर अमृत ने राष्ट्र को लाभान्वित किया है और इसके प्रभाव और परिणाम ईरानी लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इस स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की उपलब्धियों की झलक जहां सबसे ज्यादा देखी जा सकती है, उनमें से एक वैज्ञानिक क्षेत्र है।
इस्लामी क्रांति के बाद घटने वाली एक महत्वपूर्ण घटना एकेडमिक विषयों का विकास और विस्तार था। विशेष रूप से पूरे देश में उच्च स्तर पर बुद्धिमान युवा अध्ययन कर सकते हैं और उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में पहले सोचना भी संभव नहीं था। नई उपलब्धियों और आविष्कारों के क्षेत्र में ईरानी युवाओं ने कई सम्मान प्राप्त किए हैं। लेजर प्रौद्योगिकी और विभिन्न प्रकार से उनके इस्तेमाल, नैनो प्रौद्योगिकी में प्रगति, कैंसर विरोधी दवाओं का उत्पादन, निर्माण कार्य, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में वैज्ञानिक उपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक शोध प्रस्तुत करना और महत्वपूर्ण तकनीकी कार्यों में शानदार प्रगति, ये दर्शाती है कि ईरान की युवा पीढ़ी ने ये नारा साकार करके दिखा दिया है कि हम कर सकते हैं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं।
ईरान के युवाओं की सबसे नई वैज्ञानिक उपलब्धि वैश्विक महामारी कोरोना से संबंधित है। ईरान के कई स्वास्थ्य संस्थाओं ने कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना की वैक्सीन पर शोध शुरू किया और दुनिया के बाकी देशों के साथ ही वैक्सीन तैयार करने में सफलता हासिल कर ली। इस लक्ष्य तक पहुंचने में देश में मौजूद स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी ढांचे ने काफी मदद की, जिसे पिछले कुछ वर्षों के दौरान तैयार किया गया था।
नॉलेज बेस्ड कंपनियों में आम तौर पर युवा स्नातक होते हैं जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं और आगे बढ़ने के लिए भरपूर उत्साह रखते हैं। संभव है कि उनके साथ एक या दो अनुभवी प्रोफेसर भी हों, लेकिन अधिकांश संख्या उनमें युवाओं की ही होती है। हालिया महीनों में वैक्सीन उत्पादन केंद्रों में से एक के रूप में इमाम खुमैनी संस्था के प्रमुख ने इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई को एक पत्र लिखा, जिसमें उल्लेख किया गया कि आपके मार्गदर्शन और समर्थन से वैक्सीन उत्पादन 6 केंद्रों में से एक केंद्र के रूप में हम ईरान बरकत वैक्सीन के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी ज्ञान और तकनीक पर आधारित है। इसके बाद हम दुनिया में कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने वाले 6 देशों में से एक देश बन गए हैं।
ध्यान योग्य बिंदु यह है कि वर्तमान में धार्मिक विश्वासों के आधार पर जीवन व्यापन करने और साथ ही विकास के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अपनी पहचान और अपनी प्रतिभाओं को पहचानने की जरूरत है। विश्व ऐसा कोई महत्वाकांक्षी विलेज नहीं है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जाती है, बल्कि यह बड़ी शक्तियों के लिए लड़ाई, खींचतान और धमकाने का मैदान बन चुका है। दुनिया का पिछले एक सदी का इतिहास भी इस बात की गवाही देता है। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता के मुताबिक, अगर कोई राष्ट्र खुद को नहीं पहचानेगा, खुद को शक्तिशाली नहीं बनाएगा, तो दूसरे उसे धमकाएंगे। कुछ देशों को शक्तिशाली बनने में काफी समय लगता है, क्योंकि उनके लोगों में आशा नहीं होती और वे बड़ी शक्तियों से मुकाबले के लिए जरूरी ऊर्जा नहीं जुटा पाते। लेकिन हमारा राष्ट्र ऐसा नहीं है। इस दुनिया में शक्तिशाली बनने की जरूरत है, ताकि प्रगति के शिखर पर पहुंचा जा सके और न्याय हासिल किया जा सके। ईरान के लोगों, विशेष रूप से युवाओं में यह शक्ति पाई जाती है। इस्लामिक क्रांति इस दावे को साबित करने के लिए एक सबूत है। इमाम खुमैनी पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस शक्ति को पहचाना था। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
प्रिय श्रोतागण, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। स्वाति और रविश जैदी का सलाम स्वीकार करें।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि ईरान की इस्लामी क्रांति किन चीजों पर बल देती है। उनमें से एक ये है कि जो देश व तत्व इस्लामी देशों, राष्ट्रों और समाजों में फूट डालते हैं, उनसे होशियार व सावधान रहने की जरूरत है। अमेरिका के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, विचारक और विश्लेषक नोआम चाम्स्की एक लेख में इराक और सीरिया में अमेरिका के सैनिक हस्तक्षेप की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं कि क्षेत्र में अमेरिका के सैनिक हमले की वजह से दाइश भी दूसरे आतंकवादी गुटों की भांति अस्तित्व में आया। दूसरे शब्दों में, परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से आतंकवादी गुटों के गठन में अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बारंबार कहा है कि आतंकवादी गुट दाइश को अमेरिका और बराक ओबामा ने बनाया है। अमरीका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि दाइश को अमरीका ने बनाया है, और इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी एक किताब में भी किया है।
रोचक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि बराक ओबामा ने दाइश को बनाया, परंतु एक बार फिर भी बराक ओबामा ने ट्रंप की बात का न खंडन किया और न इस ही संबंध में कोई सफाई दी, जिससे पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि आतंकवादी गुट दाइश का जनक अमेरिका है। यहाँ एक बुनियादी सवाल यह है, और वह ये कि क्या अमेरिका ने केवल दाइश को बनाया है और दूसरे आतंकवादी गुट खुद से अस्तित्व में आ गए हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले यह सवाल किया जाना चाहिए कि अमेरिका ने आतंकवादी गुट दाइश का गठन क्यों किया। इस सवाल का एक जवाब यह है कि अमेरिका ने अपने राजनीतिक और गैर राजनीतिक हितों व लक्ष्यों को साधने के लिए दाइश का गठन किया है। वह अपने हितों को साधने के लिए दाइश का प्रयोग एक हथकंडे के रूप में करते हैं। जब अमेरिका अपने लक्ष्यों को साधने और उन तक पहुंचने के लिए दाइश का गठन कर सकता है तो वह दूसरे आतंकवादी गुटों का गठन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे आतंकवादी गुट भी वही काम करते हैं जो दाइश करता है। इस आधार पर जानकार हलकों का मानना है कि अमेरिका ने केवल दाइश का गठन नहीं किया है, बल्कि दूसरे आतंकवादी गुटों के गठन में भी उसकी परोक्ष व अपरोक्ष भूमिका है।
सारांश ये है कि जो ये कहा जाता है कि दाइश को अमेरिका ने बनाया है, तो इसके बजाय ये कहा जाना चाहिए कि दाइश सहित दूसरे आतंकवादी गुटों को भी अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे वर्चस्ववादी देशों की एक शैली यह है कि वे आसानी से अपने लक्ष्यों को साधने और उन तक पहुंचने के लिए इस्लामी देशों, राष्ट्रों और समाजों में फूट डालते हैं। आज इन्हीं देशों की चालों और षड्यंत्रों का नतीजा है कि कुछ इस्लामी व अरब देश एक दूसरे से नफरत करते हैं और उन देशों के मध्य कूटनायिक संबंध तक नहीं है, जैसे सऊदी अरब और सीरिया के मध्य कूटनायिक संबंध नहीं है, और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कभी भी इन देशों के मध्य तनावों को कम या खत्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। ना ये कि ये देश सऊदी अरब और सीरिया जैसे देशों के मध्य संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि उनके मध्य मतभेदों को हवा देते हैं और इसके लिए वे दाइश जैसे आतंकवादी गुटों का प्रयोग हथकंडे के रूप में करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक ओर अमेरिका और ब्रिटेन मानव अधिकारों की रक्षा का राग लापते हैं और दूसरी ओर वे आतंकवादी गुटों का समर्थन करते हैं, उनका सैन्य प्रशिक्षण करते हैं और उन्हें आधुनिकतम हथियारों से लैस करते हैं। और आज तक एक बार फिर भी इन देशों ने दाइश और दूसरे आतंकवादी गुटों के कृत्यों व जघन्य अपराधों की भर्त्सना नहीं की।
विश्वास से कहा जा सकता है कि आज इस्लाम और इस्लामी जगत को जो नुकसान तथाकथित मुसलमानों और इन देशों द्वारा बनाए गए आतंकवादी गुटों से पहुंची है, वह किसी अन्य से नहीं पहुंची। इन देशों और उनके समर्थक आतंकवादी गुटों से सीरिया, इराक, यमन और अफगानिस्तान जैसे देशों में जो तांडव व उत्पात मचाया है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पावेल सीरिया के आंतरिक मामलों में सीमा से अधिक अमेरिकी हस्तक्षेप को पश्चिम एशिया में आतंकवादी गुटों के अस्तित्व में आने और उत्तरी इराक में अराजकता का कारण मानते हैं। वे कहते हैं, सीरिया में दाइश हमारा घटक है। सीरियाई सरकार के वफादार सैनिकों को पीछे ढकेलने और हम अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करते और उन्हें हथियार देते थे, और हमने इन लोगों के लिए सीरिया में सुरक्षित स्थान बनाया। मेरे विचार में हमारा सीरिया में हस्तक्षेप इराक में जारी स्थिति का कारण बना है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्व एजेंट एडवर्ड स्नोडे ने जो रहस्योद्घाटन किया है, उसमें भी आया है कि दाइश के गठन में अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल की गुप्तचर सेवाओं की भूमिका रही है।
पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैनिक उपस्थिति का एक कारण क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अवैध ज़ायूनी शासन और अपने घटकों के हितों की रक्षा करना है। अमेरिका क्षेत्रीय देशों के मध्य जो मतभेद व फूट डालना चाहता है, उसका एक लक्ष्य क्षेत्रीय देशों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना है। और जो देश अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके हाथों अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री है। दूसरे शब्दों में अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस ने फारस की खाड़ी के देशों का दुधारू गाय व डेयरी फार्म बना रखा है। कुछ साल पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को दुधारू गाय की जो संज्ञा दी थी, उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है कि देश, विशेषकर अरब और फारस की खाड़ी के देश, ये समझते हैं कि अमरीका उनका शुभ चिंतक है और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सकता है, जबकि अनुभवों से सिद्ध हो चुका है कि अमेरिका किसी का भी हितैषी नहीं है, और जिसने भी अमेरिका पर भरोसा किया, उसका अंजाम दूसरे राष्ट्रों के लिए भी सीख बन गया। एक समय था जब इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम, ईरान के पूर्व शासक मोहम्मद रजा शाह और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी को अमेरिका का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, पर इन सब का अंजाम आज दुनिया के लिए पाठ बन गया है। क्षेत्रीय देशों को ये सोचना और समझना चाहिए कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कभी भी उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं बना सकते और उनका समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त शासक बाकी नहीं रह सकते। सद्दाम जैसे क्रूर व निर्दयी शासक के अंजाम को इसी दिशा में देखा जा सकता है।
अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा के बहाने उनका शोषण कर रहे हैं और अरबों डॉलर के हथियार इन देशों को बेच चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सालों से अमेरिकी सैनिक फारस की खाड़ी में मौजूद हैं, क्या फारस की खाड़ी के देशों की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है? अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने फारस की खाड़ी के अरब देशों को अपने हथियारों की मंडी बना रखा है। अगर फारस की खाड़ी के देश एक दूसरे से सहयोग करें और आपस में अच्छे संबंध स्थापित करें तो क्षेत्र से बाहर के देशों को क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का बहाना ही खत्म हो जाएगा। पर सवाल यह है कि क्षेत्र से बाहर के देश अपने हथियारों को कहां बेचेंगे? अमेरिका और ब्रिटेन दूसरे देशों को सबसे अधिक हथियार बेचते हैं। ये देश अपने हथियारों की बिक्री के लिए सबसे पहले बाजार व माहौल तैयार करते हैं और बाजार तैयार करने के लिए कम से कम दो देशों को आपस में लड़ाना जरूरी है। इसीलिए मतभेद फैलाना, फूट डालना और देशों को आपस में लड़ाना साम्राज्यवादी देशों की स्थायी नीति है। इस नीति के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ने सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और इराक जैसे देशों में अपनी सैनिक छावनियां बना रखी है।
यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है कि केवल सऊदी अरब में अमेरिका ने कम से कम 5 सैनिक छावनियां बना रखी हैं और हालिया वर्षों में उसने 6 अरब डॉलर से अधिक का हथियार सऊदी अरब को बेचा है। कुवैत फारस की खाड़ी में अमरीका की सबसे बड़ी छावनी में बदल गया है और जो छावनियां इस देश में हैं उनके खर्च का महत्वपूर्ण भाग का वहन कुवैत करता है। कतर में भी अमेरिका ने कई छावनियां बना रखी हैं। इस प्रकार से 11 सितंबर की घटना के बाद ये देश अमेरिका की सैनिक छावनियों में परिवर्तित हो गए हैं। संयुक्त अरब इमारात और बहरीन में भी अमेरिका ने कई सैनिक छावनियां बना रखी हैं। सीरिया और तुर्की की सीमा पर भी अमेरिका ने सैनिक छावनियां बना रखी हैं। बहुत सारे जानकार हलकों का मानना है कि अमेरिका ने जिन देशों में अपनी सैनिक छावनियां बना रखी हैं उसका एक लक्ष्य इन देशों और उनके आसपास के देशों व क्षेत्रों की निगरानी करना है।
सीरिया में अमेरिका ने अत-तनफ नाम की सैनिक छावनी बना रखी है। जानकार सूत्रों का कहना है कि अमेरिका इस सैनिक छावनी में आतंकवादियों का सैन्य प्रशिक्षण भी करता है। सीरियाई अधिकारियों ने बारंबार कहा है कि इस देश में अमेरिका की सैनिक उपस्थिति गैरकानूनी और अतिग्रहण के समान है और अमेरिकी सैनिकों को जल्द से जल्द इस देश से निकल जाना चाहिए। परंतु अमेरिका आतंकवाद से मुकाबले के बहाने सीरिया के न केवल तेल स्रोतों को लूट रहा है बल्कि वहां अनाज की भी चोरी कर रहा है। अमेरिका एक तरफ आतंकवाद से मुकाबले का दावा करता है और दूसरी ओर वह आतंकवादियों का सैन्य प्रशिक्षण करता है, उन्हें आधुनिकतम हथियारों से लैस करता है और उसने सीरिया के खिलाफ प्रतिबंध भी दिया है। इसके इन प्रतिबंधों के कारण सीरियाई जनता को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में सीरियाई राजदूत बेसाम सब्बाग ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा था कि वाशिंगटन दाइश को जीवित करने की चेष्टा में है, जबकि राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी अभी हाल ही में घोषणा की थी कि दाइश के आतंकवादियों के पास लगभग 30 करोड़ डॉलर की संपत्ति है और दाइश के आतंकवादियों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे किसी क्षेत्र का अतिग्रहण कर सके। परंतु आतंकवादियों के हमलों में कमी अस्थायी है और वे पैसा इधर उधर स्थानांतरित करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में सक्षम है। इसी प्रकार राष्ट्रसंघ के महासचिव ने कहा था कि दाइश अपने सदस्यों को पश्चिम एशिया और अफ्रीका में वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा था कि दाइश की आमदनी का एक स्रोत प्राचीन व ऐतिहासिक धरोहर है और इन चीजों को कहाँ रखा जाता है इसकी जानकारी दाइश के केवल खास तत्वों को है।
बहरहाल दाइश और दूसरे आतंकवादी गुट अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ दूसरे देशों और ज़ायोनी शासन के समर्थन और क्रियाकलापों के परिणाम हैं और अमेरिका की सैनिक छावनी को अशांति की छावनी की संज्ञा दी जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, अनुमति दें।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। पश्चिमी देशों की ओर से वियना में जारी वार्ता में तेजी लाने पर बार बार किए जा रहे आग्रह के जवाब में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने कहा है कि अगर पाबंदियां हटाए जाने के मामले में पश्चिमी देशों ने यथार्थवादी रुख नहीं अपनाया तो वार्ता प्रक्रिया में तेजी नहीं आ सकती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ईरान के खिलाफ बाइडेन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि तेहरान के खिलाफ अमेरिका की सैनिक धमकियां खोखली व गीदड़ भभकी हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ताकाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने न्यूज वीक पत्रिका के साथ साक्षात्कार में कहा कि बाइडेन सरकार परमाणु समझौता चाहती है और अंत में वो इस पर सहमति कर लेगी। हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद नसरुल्लाह ने ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता की सालगिरह के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि जब स्वर्गीय इमाम खोमेनी निर्वासन के बाद फ्रांस से स्वदेश लौटे थे तो जनता के चेहरे पर हर्ष की जो लाली थी वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। तो श्रोताओ इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं, खुदा हाफिज, शुभ रात्रि। Thank you.